संशय का प्रकरण चल रहा है, इसमें पहला जो भेद था संशय का कि जिसमें विशेष का आदर्शन हो और सामान्य धर्म समान धर्म का दर्शन हो ऐसा संशय, उसका उदाहरण बताया था कि मयम स्थानुर्वा पुरुषोवा, इसकी चर्चा हुई थी। अब दूसरा जो संशय का भेद है उसकी चर्चा करते हैं कि द्वितीयस्तु संशय हो विशेष आदर्शने सति विप्रतिपत्ति जहा। द्वितीय संशय का भेद किसको कहते हैं, तो विशेष आदर्शने सति माने जहाँ पर विशेष धर्म का दर्शन न हो और विप्रतिपत्ति से ज हो माने उत्पन्न हो। विप्रतिपत्ति मतलब विप्रतिपत्ति का अर्थ जो है ना यहाँ पर हमें लेना है कि जो विचार को का प्रवर्तक हो, जो विचार को आगे बढ़ाने वाला हो उसको हम यहाँ पर विप्रतिपत्ति शब्द से लेंगे। तो संस्कृत में अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विप्रतिपत्ति ही विचार प्रवर्तिका भवति, विप्रतिपत्ति ही विचार प्रवर्तिका भवति। फिर से बोलता हूँ, विप्रतिपत्ति ही विचार प्रवर्तिका भवति माने विचार विमर्श जो आरंभ होता है उसमें विप्रतिपत्ति ही कारण होता है। अगर विप्रतिपत्ति न हो तो विचार विमर्श का आरंभ नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर द्वितीय संशय का भेद किया गया, इसमें कहा गया कि परस्पर विरुद्ध जो दो धर्म की प्रतिपत्ति है, उपस्थिति है, उसका जनक जो है जो हो उसको हम कहते हैं विप्रतिपत्तिज संशय। फिर से सुन लीजिए, परस्पर विरुद्ध दो धर्मों की प्रतिपत्ति का जो जनक हो उसको हम कहते हैं विप्रतिपत्तिज संशय। यहाँ पर जो विप्रतिपत्ति होती है वो परस्पर दो विरुद्ध धर्मों के बारे में होती है। अब जैसे मान लीजिए शब्द है, तो शब्द में दो धर्म, एक नित्यत्व धर्म एक अनित्यत्व धर्म, आ ये दोनों धर्म क्या है, परस्पर विरुद्ध धर्म है, क्योंकि जहाँ नित्यत्व रहेगा वहाँ अनित्यत्व नहीं रहेगा, जहाँ अनित्यत्व रहेगा वहाँ नित्यत्व नहीं रहेगा। तो शब्द में नित्यत्व है या अनित्यत्व है, इस तरह से परस्पर विरुद्ध जो धर्म की प्रतिपत्ति है उसका जो ज्ञान है उस वही है विप्रतिपत्तिज संशय। आगे बताते हैं स्वयथा, उस उदाहरण दिया कि शब्दो नित्य उत अनित्य इति, वही बात जो मैंने बताई थी कि शब्द नित्य है, उत उत माने अथवा, अनित्य शब्द अनित्य है, इस तरह का जो संशय है यह विप्रतिपत्तिज संशय है, क्योंकि इसमें विप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति से ज माने जन्य कैसे है। तो विप्रतिपत्ति में क्या होता है कि दो परस्पर विरुद्ध धर्म होते हैं, तो यहाँ पर दो परस्पर विरुद्ध धर्म कौन है, एक है नित्यत्व धर्म और एक अनित्यत्व धर्म, और ये जो संशय है शब्दो नित्य उत अनित्य, इस संशय में इन दोनों विरुद्ध धर्मों की प्रतिपत्ति हो रही है, किन दो विरुद्ध धर्मों की, नित्यत्व धर्म की और अनित्यत्व धर्म की। अब इसको और क्लियर करते हैं आगे कि तथा ही एको ब्रूते शब्दो नित्य, कोई एक जो है ना आचार्य बोलते हैं कि शब्द नित्य माने शब्द नित्य होता है, अपरो ब्रूते शब्द अनित्य इति, और दूसरे बोलते हैं कि शब्द जो है वह अनित्य होता है। अब क्या होगा, तयो विप्रतिपत्तिया, अब दोनों की बातों में विप्रतिपत्ति हो जाती है, क्योंकि दोनों विरुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, एक नित्यत्व धर्म की बात कर रहे हैं एक अनित्यत्व धर्म की बात कर रहे हैं, तो जहाँ दो विरुद्ध धर्म की बात हो उसी का नाम है विप्रतिपत्ति, और वही विप्रतिपत्ति जो है ना विचार की प्रवर्तिका होती है। खैर, तो तयोह विप्रतिपत्तिया, वहाँ पर विप्रतिपत्ति हो जाने से माने विरुद्ध धर्म की प्रतिपत्ति हो जाने से, विरुद्ध धर्म का वहाँ पर ज्ञान हो जाने से मध्यस्थस्य पुंसः, जो मध्यस्थ पुरुष होता है जो दोनों की बात सुनता रहता है, ऐसे व्यक्ति को विशेषम अपश्यतः, विशेष उसमें उसको कुछ दिखता नहीं है, माने नित्यत्व का साधक भी कुछ नहीं दिखता उसको और अनित्यत्व का साधक भी उसको कुछ नहीं दिखता। ऐसा जब विशेष का आदर्शन होता है मध्यस्थ व्यक्ति को, तो फिर उसको उसके मन में संशय होता है कि किम अयम शब्द नित्य उत अनित्य, कि क्या ये शब्द जो है ये नित्य है अथवा अनित्य है। तो इस प्रकार का जो संशय हुआ ये हो गया संशय कौन, विप्रतिपत्तिज संशय। इस संशय में भी क्या है, विशेष का आदर्शन है, पहले वाला जो था भेद उसमें भी विशेष का आदर्शन हो रहा था और समान धर्म का दर्शन हो रहा था, यहाँ पर क्या है विशेष का आदर्शन है और परस्पर विरुद्ध दो धर्मों की प्रतिपत्ति हो रही है। ठीक है, ये अंतर है। तृतीय असाधारण धर्मज अस्तु संशया, तीसरा जो है संशय वो होता है असाधारण धर्मज, असाधारण माने विशेष, विशेष धर्म को देखने के कारण ये संशय उत्पन्न होता है। यथा नित्यात अनित्याच व्यावृत्तेन, नित्य और अनित्य से जो व्यावृत्त है, व्यावृत्त है मतलब जहाँ पर ये निश्चय नहीं है कि ये नित्य है या अनित्य है, तो यथा नित्यात अनित्याच व्यावृत्तेन भूमात्र असाधारणेन गंधवत्वेन विशेषम अपश्यतो भुवि नित्यत्वानित्यत्व संशयः, कहा कि नित्य में रहने वाला ये धर्म है गंधवत्व धर्म, अथवा अनित्य में रहने वाला है ये गंधवत्व धर्म, इस तरह का जहाँ पर व्यावृत्त नहीं है, मन इस तरह का जहाँ पर निश्चय नहीं है, वहाँ पर भूमात्र का, भूमात्र मतलब नित्य भू और अनित्य भू, भू माने पृथ्वी, तो नित्य माने गंधवत्व धर्म जो है ये नित्य भू में रहता है अथवा अनित्य भू में रहता है, इस तरह का जहाँ पर निश्चय नहीं है वहाँ पर भूमात्र का जो असाधारण जो धर्म है गंधवत्व धर्म, उस गंधवत्व धर्म को विशेषम अपश्यतः, उस विशेष धर्म को नहीं देखता हुआ व्यक्ति भूवि, भू माने भू में पृथ्वी में नित्यत्व अनित्यत्व संशय, उसको जो है पृथ्वी में नित्यत्व और अनित्यत्व का संशय उत्पन्न होता है। तथा ही सकल नित्य व्यावृत्तेन गंधवत्वे योगाद भू किम अनित्या, उत सकल अनित्य व्यावृत्तेन एव तेनेव योगान नित्या इति संशयः। इस स्थिति में सकल नित्य व्यावृत्तेन गंधवत्वे, जितने भी नित्य द्रव्य नित्य पृथ्वी है उससे व्यावृत्त माने उससे अलग जो गंधवत्व का योग होता है माने संबंध होता है गंधवत्व का, उस संबंध से भू किम अनित्या माने क्या भू जो है वह अनित्य है, अथवा सकल अनित्य व्यावृत्ते न तेनेव योगान नित्य, अथवा सकल अनित्य भू से व्यावृत्त जो है गंधवत्व उसके योग होने के कारण भू जो है यह नित्य है, इस तरह का संशय होता है। ऐसा है कि गंधवत्व धर्म है, गंधवत्व धर्म जो है वह धर्म सकल नित्य भू में रहता है अथवा सकल अनित्य भू में रहता है, इस तरह का जहाँ पर विशेष का दर्शन नहीं है, इस तरह से विशेष उस जहाँ पर व्यक्ति को मालूम नहीं है वहाँ पर गंधवत्व धर्म को देख करके उसको संदेह होगा भू में कि यह भू जो है इसमें गंधवत्व धर्म तो है, तो गंधवत्व धर्म है तो गंधवत्व धर्म के कारण ये भू नित्य है या भू अनित्य है, इस तरह का उस व्यक्ति को संदेह होगा। यहाँ जो संदेह उत्पन्न हुआ है वो किसको देख करके, गंधवत्व धर्म को देख करके, ये गंधवत्व धर्म क्या है, भू का असाधारण धर्म है, पृथ्वी का असाधारण धर्म है, तो किसी द्रव्य के असाधारण धर्म को देखने से जो संशय उत्पन्न होता है वह तीसरा भेद के अंतर्गत आएगा। संशय के भेद में यहाँ पर क्या हुआ, गंधवत्व धर्म का दर्शन हुआ, उसको ये नहीं मालूम है कि ये गंधवत्व धर्म नित्य में रहता है कि अनित्य में रहता है, और ऐसी स्थिति में गंधवत्व धर्म को देखने से उसको भू में संदेह होगा कि यह भू जो है नित्य है अथवा अनित्य है। इस तरह से संशय के तीन भेदों का निरूपण यहाँ करके आगे बढ़ते हैं। केन कहते हैं कि येन प्रयुक्तः पुरुषः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम्। प्रयोजन किसको कहते हैं तो उसको बता रहे हैं कि येन प्रयुक्तः पुरुषः, यहाँ प्रयुक्तः का अर्थ प्रेरितः कर लीजिए, कि येन प्रेरितः पुरुषः प्रवर्तते, जिससे प्रेरित होकर के पुरुष प्रवृत्त होता है तत् प्रयोजनम्, उसी का नाम है प्रयोजन। तच्च सुख दुख अवाप्ति हानि, यह जो प्रयोजन है वह दो प्रकार का होता है, एक तो सुख प्राप्ति रूपी प्रयोजन और एक दुख हानि रूप प्रयोजन। तो या तो सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होता है किसी काम में, अथवा दुख की हानि के लिए जो है व्यक्ति प्रवृत्त होता है किसी कार्य में, तो और वही जो सुख की प्राप्ति और दुख की हानि जो है वही पर वही जो है प्रयोजन कहलाती है। तदर्था ही प्रवृत्ति सर्वस्य, और उसी के लिए सर्वस्य प्रवृत्ति, सभी की जो है व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। इस तरह से प्रयोजन के बारे में बताया। फिर अब दृष्टांत के बारे में बताते हैं कि ये दृष्टांत क्या है। असल में ये जो शुरू में जो आपने सूत्र पढ़ा था ना, जिसमें 16 पदार्थ की बात आई थी, याद है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सब वाला, तो उसमें जितने भी आए थे ना, वो सब के बारे में बारी बारी से जो है ना आपको बताया जा रहा है। उसमें बीच में कोई शब्द आ जाता है जिसके कि कई सारे भेद होते हैं, तो उस बीच में ना वो सारे भेद बताने लगते हैं। फिर उसके बाद फिर जो क्रम से आया उस सूत्र के अंतर्गत, उस सूत्र के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो उसी में जो है प्रयोजन आया था, तो प्रयोजन को बताया। अब दृष्टांत की बारी है। दृष्टांत किसे कहते हैं? दृष्टांत की चर्चा जो है ना अनुमान प्रमाण में हम लोगों ने बहुत पढ़ा। दृष्टांत माने उदाहरण होता है, अभी तक जो आप समझते हैं। यहाँ पर ये लक्षण बताते हैं दृष्टांत का। वादि प्रतिवादिनोः संप्रतिपत्ति विषयः अर्थः सिद्धान्तः दृष्टान्तः। वादी और प्रतिवादी, वादी जो है ना अपना सिद्धांत उपस्थापित करता है, और प्रतिवादी जो है उसके विरुद्ध जो है ना अपनी बात को रखता है। तो सिद्धांत का जो स्थापक है वह वादी कहलाता है, और उस सिद्धांत के विरोध में जो अपनी बात रखता है वह प्रतिवादी कहलाता है। क्लियर? और वादी प्रतिवादी दोनों की जहाँ संप्रतिपत्ति हो, ऐसा विषय हो जिस विषय पर दोनों एकमत हो, वो जो एकमत वाली बात है उसको संप्रतिपत्ति कहा गया। माने समान प्रतिपत्ति, वादी को भी वहाँ पर जो है ना समान प्रतिपत्ति हो किसी विषय में, और प्रतिवादी को भी उसी विषय में समान प्रतिपत्ति हो, तो ऐसे विषय को जो है ना वहाँ पर दृष्टांत कहा जाता है। सौ द्विविधा, वह दृष्टांत दो प्रकार का होता है। एक साधर्म दृष्टांत और द्वितीय वैधर्म दृष्टांत। एक साधर्म दृष्टांत होता है, एक वैधर्म दृष्टांत होता है। साधर्म मतलब समान धर्म में होने वाला, और वैधर्म मतलब विरुद्ध धर्म में, विपरीत धर्म में होने वाला। तो माने समान धर्म वाला दृष्टांत और विपरीत धर्म वाला दृष्टांत, इस तरह से दृष्टांत के दो भेद हैं। उदाहरण दिया साधर्म दृष्टांत का, यथा धूमवत्वस्य हेतु हो महानसम। अब जो है अग्नि का जो अनुमान करते हैं उसमें धूमवत्व हेतु देते हैं ना, तो धूमवत्व हेतु जो है उसमें महानस में, माने रसोई घर, महानस माने रसोई घर, तो रसोई घर में आग रहती है, माने महानस जो है वो अग्निमान होता है। इसमें वादी की भी संप्रतिपत्ति है और प्रतिवादी की भी संप्रतिपत्ति है। वादी भी मानता है कि महानस बहनिमान है, और प्रतिवादी भी मानता है कि महानस बहनिमान है। दोनों की संप्रतिपत्ति का विषय होता है महानस। ठीक है, तो ये हो गया साधर्म दृष्टांत। लेकिन पर्वत बहनिमान है कि नहीं, उसमें वादी तो कहता है कि पर्वत बहनिमान है, लेकिन प्रतिवादी कहता है कि पर्वत बहनिमान नहीं है। तो पर्वत संप्रतिपत्ति का विषय नहीं हुआ। जहाँ पर दोनों का ऐक्य हो, दोनों एक मत से स्वीकार करें, उसी का नाम है दृष्टांत। तो महानस को दोनों ही स्वीकार करते हैं कि बहनिमान है, इसलिए महानस जो है वह दृष्टांत हुआ। यह जो दृष्टांत हुआ वो कौन सा हुआ? साधर्म दृष्टांत हुआ। समान धर्म के आधार पर दृष्टांत ये बनेगा महानस। समान धर्म क्या है? तो धूमवत्व। धूमवत्व धर्म जो है महानस में भी होता है, समान रूप से यह धूमवत्व धर्म पर्वत में भी होता है, तो यह साधर्म का उदाहरण हुआ। अब वैधर्म दृष्टांत का उदाहरण देते हैं। यथा तस्यैव हेतोः महाहृदः इति। अब तस्यैव हेतु माने धूमवत्वस्यैव हेतु हो, धूमवत्व जो हेतु है उसके लिए वैधर्म दृष्टांत बनता है क्या? महाहृद, क्योंकि महाहृद में जो है बहनी, महाहृद बहनिमान नहीं होता है। तो और यह जो महाहृद जो कहा जाता है माने जो धूमवान नहीं होगा वो बहनिमान नहीं होगा, जैसे कि महाहृद। तो यहाँ पर महाहृद का जो दृष्टांत दिया गया ये वैधर्म दृष्टांत है। इसी को जो है ना दूसरे शब्द से अगर कहना चाहें तो साधर्म दृष्टांत जो होता है वो अन्वयी दृष्टांत कहलाता है, और वैधर्म दृष्टांत जो कहलाता है वह व्यतिरेकी दृष्टांत कहलाता है। ठीक है, अब वैधर्म दृष्टांत के बारे में और अगर सुनना चाहें तो जैसे मान लीजिए धूम से पर्वत में बहनी के अनुमान में ह्रद जलाशय का अगर उपयोग किया गया, तो वहाँ पर ह्रद जो है पक्ष पर्वत का विधर्मा है, क्योंकि पर्वत में धूम और अग्नि है किंतु जलाशय में दोनों का अभाव है, हरद कहते हैं जलाशय को, तो दोनों का अभाव है। जलाशय एक ऐसा स्थान है जहाँ की बहनी अभाव में धूम अभाव के सहचार का अवगम होता, माने जत्र बहनी नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महारदः। ये जो कहा जाता है, इस तरह का जो दृष्टांत दिया जाता है, ये बेधर्म दृष्टांत होता है। इसी को हम व्यतिरेकी दृष्टांत भी कहते हैं। आगे फिर सिद्धांत की बात करते हैं कि सिद्धांत किसे कहते हैं, तो प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः अर्थः सिद्धांतः। प्रामाणिकत्वेन माने प्रमाणों के द्वारा जो अभ्युपगत अर्थ है, अभ्युपगत का अर्थ करिए स्वीकृत अर्थ, तो प्रमाणों के द्वारा जो स्वीकृत अर्थ होता है उसे हम सिद्धांत कहते हैं। जैसे व्याकरण सिद्धांत कॉमेडी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये कई लोग पूछते हैं कि व्याकरण सिद्धांत ये सिद्धांत क्या है, तो गुरुजी लोग बताते हैं वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः, माने वादी और प्रतिवादी के द्वारा निर्णीत जो अर्थ होता है उस अर्थ को हम सिद्धांत कहते हैं। या ये दूसरा सिद्धांत का लक्षण यहाँ बताया, प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः अर्थः सिद्धांतः, माने प्रमाणों के द्वारा जो अभ्युपगत अर्थ है, स्वीकृत अर्थ है, उस अर्थ का नाम है सिद्धांत। तो जितना आप शास्त्र पढ़ते जाएंगे, जितना ग्रंथ पढ़ते जाएंगे, एक ही शब्द के अनेकों लक्षण, अनेकों तरह से पर्याय, ये सब ज्ञान होता चला जाता है। चलिए, स्वचतुर्धा, यह जो सिद्धांत है यह चार प्रकार का होता है सिद्धांत, लेकिन समय आज नहीं रहने के कारण इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।